नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और निजी विषय पर बात करने वाले हैं।
जी,
हमारे पास पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक अहम उद्बोधन है, अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये शीर्षक है अध्यात्म अंतरंग का परिष्कार। अक्सर हम लोग मतलब अध्यात्म को पूजा पाठ कर्मकांड बस यहीं तक समझ लेते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का नजरिया तो कुछ और ही है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है इस मामले में। वो कहते हैं कि अध्यात्म तो ज्ञान की सबसे ऊंची धारा है।
अच्छा।
हाँ, और उसका असली लक्ष्य कोई बाहरी क्रियाकलाप नहीं बल्कि जीवात्मा का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना है।
जीवात्मा का स्तर?
जी, असल काम तो अंतरंग का है, मतलब हमारे मन का, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों, उनको शुद्ध करने का, उनका परिष्कार करने का।
तो फिर ये पूजा पाठ ये सब जो हम करते हैं ये क्या है?
देखिए, ये साधन है, साध्य नहीं।
साधन?
हाँ, पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये जो बाहरी क्रियाएं हैं ना, ये हमें अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये प्रतीक हैं, प्रेरणा हैं।
प्रतीक और प्रेरणा? जैसे कोई उदाहरण?
बिल्कुल, जैसे मान लीजिए हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, खिले हुए सुगंधित फूल।
हाँ, चढ़ाते हैं।
तो इसके पीछे भाव ये है कि हमारा जीवन भी वो भी तो ऐसे ही खिला हुआ होना चाहिए, प्रसन्न, सद्गुणों की सुगंध से महकता हुआ।
अरे वाह।
आप सोचिए, मुरझाया हुआ उदास जीवन वो ईश्वर को कैसे प्रिय होगा। तो फूल चढ़ाना एक तरह से याद दिलाना है खुद को।
ये तो बहुत दिलचस्प है, मतलब हर चीज का एक गहरा मतलब है। अच्छा, तो जैसे चंदन चढ़ाते हैं उसका क्या अर्थ हुआ फिर?
चंदन तो शीतल होता है।
सही पकड़ा आपने, चंदन शीतल है, सुगंध देता है। तो यहाँ संकेत ये है कि हमारा मन, हमारा दिमाग शांत रहे, शीतल रहे।
और जैसे चंदन अपने आसपास के पौधों को भी खुशबू देता है ना, वैसे ही हम भी अपने संपर्क में जो लोग आए उनके जीवन में शांति फैलाएं, अच्छाई फैलाएं, हमारा व्यवहार दूसरों को सुकून दे, शीतलता दे।
और मिठाई भोग लगाते हम, उसका क्या रहस्य है?
देखिए, मिठाई याद दिलाती है कि ईश्वर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है।
क्या?
मिठास। हमारी वाणी की मिठास, हमारे व्यवहार की मिठास, हमारी भावनाओं की मिठास। जीवन में मिठास घोलना,
राइट,
असल में यही सच्चा भोग है, कड़वाहट नहीं।
सही कहा।
और दीपक, दीपक भी जलाते हैं।
हाँ, दीपक।
दीपक खुद जलता है लेकिन रोशनी फैलाता है।
जी,
ये सिखाता है कि हम भी अपने अंदर स्नेह भरें। स्नेह मतलब प्रेम भी और घी तेल भी, और फिर चाहे खुद कष्ट सहना पड़े पर संसार में ज्ञान का, अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने।
तो ये सारे कर्मकांड एक तरह से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अंतरंग को निखारने के अभ्यास हुए।
बिल्कुल, अभ्यास है ये।
पूज्य गुरुदेव का जो मुख्य जोर है वो किस बात पर है? क्या सिर्फ इन प्रतीकों को समझना काफी है या कुछ और भी है?
नहीं, सिर्फ समझना काफी नहीं है, उनका जो मुख्य जोर है वो है अहंता पर, अहंकार।
अहंकार?
हाँ, अहंता का निराकरण, मतलब अहंकार को हटाना। साधना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन लक्ष्य है जीवात्मा का स्तर उठाना। और ये तब होता है जब व्यक्ति मैं के छोटे से दायरे से बाहर निकलता है, जब वो हम में जीने लगता है, जब उसका स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है, विश्वव्यापी हो जाता है, तब सही मायनों में वो योगी बनता है।
मैं से हम तक की यात्रा, ये सुनने में कितना आसान लगता है पर शायद करने में सबसे मुश्किल यही है।
बहुत कठिन है, और शायद इसीलिए उन्होंने गायत्री मंत्र के केंद्र का जिक्र किया है।
गायत्री मंत्र?
हाँ, उसका जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, धियो यो नः।
धियो यो नः, हमारी बुद्धि को।
बिल्कुल, मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी बुद्धि को। ये मैं की जगह हम की प्रार्थना है ना? जब हमारी सोच सिर्फ अपने तक नहीं रहती बल्कि समाज तक, विश्व तक, पूरी मानवता तक पहुंचती है, तब अध्यात्म सही मायने में सत्ता है।
और मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, अपने अहंकार को कम करके दूसरों के हित में लगता है, तो फिर क्या होता है? क्या उसे कोई मदद मिलती है, कोई दैवीय सहायता?
पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं भगवान प्रतिध्वनि और प्रतिछाया की तरह हैं।
प्रतिध्वनि और प्रतिछाया, इको एंड रिफ्लेक्शन।
हाँ बिल्कुल, जैसा भाव हम रखते हैं, जैसी क्रिया हम करते हैं, ठीक वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम सिर्फ मांगते रहते हैं हमेशा, मुझे दो मुझे दो, यानी भोगी बनकर जीते हैं, तो जीवन में संघर्ष ही मिलता है।
अच्छा।
पर जब हम समर्पित होते हैं, देते हैं, योगी बनकर जीते हैं, तो ईश्वर का सहयोग मिलता है, उनकी कृपा बरसती है।
क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इतिहास से या कहीं से?
अरे बहुत उदाहरण है। आप देखिए, जब अर्जुन ने धर्म स्थापना के लिए युद्ध का फैसला किया तो भगवान कृष्ण खुद उनके सारथी बन गए।
हाँ ये तो है।
भगवान बुद्ध जब लोक कल्याण के लिए निकले तो सम्राट अशोक जैसे कितने ही लोग उनके सहायक बन गए। शंकराचार्य जब निकले तो उन्हें राजाओं का समर्थन मिला। जापान के कगावा का उदाहरण है, उन्होंने सेवा का व्रत लिया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। ईश्वर हमेशा उनकी मदद करते हैं जो निस्वार्थ भाव से धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए खड़े होते हैं।
तो फिर ये जो आजकल योग का मतलब समझा जाता है, आसन प्राणायाम, वो पूरा योग नहीं हुआ?
बिल्कुल नहीं, वो तो योग का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्चा योग तो भावनाओं का, विचारों का परिष्कार है।
भावनाओं और विचारों का परिष्कार?
जी, अपने मन से लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, ये सब जो मलिनताएं हैं, इनको हटाना, यही असली आत्मशोधन है, यही वास्तविक योगाभ्यास है।
अच्छा,
योग का मतलब क्या है? जुड़ना। किसका जुड़ना? जीवात्मा का परमात्मा से। और ये मिलन, ये जुड़ाव तभी संभव है जब हमारा अंतरंग, हमारी चेतना बिल्कुल निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। तो ये जो भोगी से योगी बनने की यात्रा है ना, बस यही अध्यात्म है, अंतरंग का परिष्कार।
तो आखिर में सोचने वाली बात हम सबके लिए ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में इस अंतरंग के परिष्कार को कैसे ला सकते हैं?
जी, यही मूल प्रश्न है।
कैसे हम पूजा के इन प्रतीकों का असली मतलब समझकर सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि सचमुच अपने जीवन को फूलों सा खिला हुआ, चंदन सा शीतल और शांत और दीपक की तरह दूसरों के लिए प्रकाशमान बना सकते हैं।